परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं।
ओम शांति। वीणावादिनी हंसवाहिनी देवी सरस्वती आपके जीवा पर सदा विराजमान होगी। आप हर की पौड़ी हो, ऐसे सुंदर वरदानों से स्वयं परमात्मा ने जिसे संवारा, ऐसी आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी का ये सौभाग्य रहा, बाल्यकाल से ही ईश्वरीय ज्ञान मिला। मुंबई माया नगरी से निकले आप ईश्वर के अनमोल रतन हैं। बाबा का ज्ञान क्या मिला? अलौकिक जन्म बाबा की गोद में हुआ 12 वर्ष की उम्र में, और उसके बाद लौकिक और अलौकिक दोनों ही पढ़ाई साथ साथ करते रहे। और 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा बाबा की जो आप में आश थी उसको पूरा करने के लिए आप अपनी एग्जाम्स देकर बीएससी फाइनल ईयर की, रिजल्ट अभी आया नहीं था लेकिन एग्जाम हो गई थी, और मधुबन में मई मास में जो सबसे पहली टीचर्स ट्रेनिंग चली उसमें आपने पार्टिसिपेट किया। दादियों ने ट्रेनिंग के बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए विभिन्न स्थानों पर भेजा, जैसे कि राजकोट, हैदराबाद, बेंगलोर, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस, देश और विदेश की धरनियों पर अलग अलग स्थानों पर आप सेवाएं करते रहे। बाबा के बच्चे निकलते रहे, सेवा केंद्र खुलते रहे, और फिर 1976 में मधुबन में आने पर आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा था, और वो सुनहरा अवसर था। स्वयं दादी ने आपको ऑफर किया, अब हो गई बहुत सेवाएं बाहर की, अब मधुबन धरनी पर रहकर सेवाएं करो। तो बहुत सुंदर ऑफर मधुबन निवासी बनने का, जिसको आपने सहर्ष स्वीकार किया। तो 1976 से लेकर आज दिन तक इस मधुबन धरनी में रहकर दादियों की पालना में पलते हुए जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया, वो अब सब पर लुटाने का समय है। तो वर्तमान में आप हमारे जो राजयोग शिविर होते हैं उनकी निर्देशिका हैं, एजुकेशन विंग की आप उपाध्यक्षा हैं। मधुबन आंगन में, पांडव भवन में जो भट्टियां चलती है उसके कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही साथ डबल विदेशियों के सीजन में जो प्रोग्राम चलते हैं उनके भी आप कोऑर्डिनेटर हैं। बाकी छोटी छोटी गुप्त रीति से न दिखाई देने वाली सेवाएं तो अनेक है, जिस हर सेवा का जिक्र करना मुमकिन नहीं है। तो अनेक सेवाओं में व्यस्त रहते हुए और साथ साथ देश विदेश में भ्रमण करके सेवा करना, ये भी आपकी सेवाओं के अंतर्गत है। 75 से भी अधिक देशों का भ्रमण करके बाबा का नाम पूरे विश्व में बाला किया है, और हम सभी जानते हैं आज तो 24 घंटा हमारी चैनल्स चलती हैं, लेकिन मीडिया में टीवी के पर्दे पर ब्रह्मा कुमारीज को अगर किसी ने रिप्रेजेंट किया पहली बार तो किसका नाम आता है? आदरणीय शीलू दीदी का। तो दीदी ने हर क्षेत्र में पहली बार का बहुत बड़ा भाग्य प्राप्त किया है। पहली बार शिविर के लिए निमित्त बनी मधुबन निवासी बहन। ट्रांसलेशन की सेवा जो बाबा की अव्यक्त मूल्यां चलती है, पहली बहन जिसने वो जिम्मेवारी उठाई बाबा की लाइव मूल्यों का लाइव ट्रांसलेशन देने की, पहली आत्मा जिसने टीवी के पर्दे पर ब्रह्मा कुमारी इसको रिप्रेजेंट करने का कदम उठाया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें दीदी का फर्स्ट 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 नंबर आता है। 75 ईयर्स पूरे कर चुके हैं पहली आत्मा जिसने अपनी प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट की है। तो ऐसी महान आत्मा जिन्होंने दादियों की पालना लेकर, बाबा की पालना लेकर, उनकी शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को ढाला है, अब वैसे ही अन्य आत्माएं ढल जाएं, वही दादी और बाबा वाला प्यार सब पर लुटाते हैं और दादियों की कमी किसी को न हो ऐसा सबको भासना देते हैं। तो ऐसी आदरणीय दीदी से हमारा जो भट्टी का लक्ष्य है महसूसता द्वारा संपूर्णता, इसी को एक विषय लेकर स्पष्ट करेंगे और वो विषय है साक्षी दृष्टा स्थिति। तो सुनते हैं दीदी से भट्टी का लक्ष्य और साथ ही साथ साक्षी दृष्टा स्थिति। आदरणीय दीदी जी,
आप भी अपना परिचय दो।
शरीर का नाम इंदिरा बहन है। 1987 में घर बैठे बाबा का ज्ञान मिला और फिर 1998 से बाबा की सेवाओं में जीवन समर्पित यात्रा की आरंभ शुरू की। 98 में आरंभ में हमने ज्ञान सरोवर में 5 वर्ष तक रहकर स्पार्क ऑफिस में सेवाएं दी कि जिन 5 सालों के दरमियान बाबा ने इस आत्मा को एक पुस्तक लिखने का सौभाग्य प्रदान किया जिस पुस्तक का नाम है मनोबल एवं मनसा सेवा, जो इतनी मोटी किताब है, स्पार्क का पब्लिकेशन है, जो हमारे लिटरेचर में सेल होती है। और जिसे अगर इसकी शक्ल आदि नहीं पता हो, नाम नहीं पता हो, ग्लोबल ऑफिस के बाहर डिस्प्ले में लगा रखी है तो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, बाबा ने स्वयं उसको रिलीज किया था अपने हस्तों से और उस पुस्तक के प्रति संदेश भी वहाँ डिस्प्ले किया हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं और उस पुस्तक को खरीदने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए उसको आप मददगार पाएंगे। तो 5 वर्ष तक हम स्पार्क ऑफिस में सेवा देते रहे और फिर चूंकि हम नागपुर सब छोन से निकले हैं तो नागपुर सेवा केंद्र में रहे और चूंकि हम स्पार्क से कनेक्टेड थे तो रमेश भाई और उषा बहन ने हमें गामदेवी सेवा केंद्र पर रहने का अवसर दिया और चूंकि हमने शुरुआत तो हेडक्वार्टर से की थी, वापस हेडक्वार्टर में आए और 2009 में शीलू दीदी ने अवसर दिया तो 2009 से लेकर अब तक उनके साथ उनकी ऑफिस में बैठकर उनकी जो सेवाएं हैं उसमें अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति। अभी सुनते हैं दीदी को, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारी अति प्यारी दादी जानकी जी ने 3 बार ओम शांति कहना सिखलाया। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, ये सदा दादी याद दिलाते रहते थे और प्रेरणा देते रहते थे। तो मधुबन तपोभूमि वरदान भूमि, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, परिवर्तन भूमि में आप सभी अजमेर के संबंध में आए हुए भाई बहनें तथा अन्य स्थानों से आए हुए भाई बहनों का मधुबन स्वर्गाश्रम में हमारी प्यारी दादियों के साथ साथ हमारी तरफ से भी आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ताली बजा सकते आपको। बहुत ही भाग्यशाली हैं आप जो पांडव भवन में भट्टी करने का चांस मिला। ब्रह्मा बाबा के चार धाम आप अगले 3-4 दिन अनुभव करते रहेंगे और महसूस करेंगे कि ब्रह्मा बाबा ने और दादियों ने जो यहाँ तपस्या की, उसके जो पावरफुल वाइब्रेशंस है, वे कितना आत्मा को सुकून देते हैं, शक्ति भरते हैं। तो वो शक्ति भी आप अवश्य यहाँ भर के ही जाएंगे। जैसे आपको बताया, ये माला मिली है, बैज मिला है, उस पर लिखा है महसूसता द्वारा संपूर्णता, संपन्नता। तो कौन सी महसूसता हमें हो जिसके आधार से हम संपन्न बन सकते हैं, संपूर्ण बन सकते हैं। पहले हम संपन्न बनते हैं, फिर संपूर्ण बनते हैं। बाबा हमेशा दोनों शब्द साथ साथ कहते हैं, लेकिन पहले संपन्न बनना होता है। संपन्न माना भरपूर, और संपूर्ण माना कंप्लीट इंग्लिश में कहें, और संपन्न माना फुल। तो फुल एंड कंप्लीट अगर इस हिसाब से कहें तो, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है चंद्रमा। पूर्णम की रात चंद्रमा फुल भी होता है, पूरे प्रकाश के साथ, और साथ साथ कंप्लीट भी होता है, पूरा सर्कल। तो प्रकाश में भी संपन्न और आकार में संपूर्ण, तब कहा संपन्न और संपूर्ण। तो बाबा हम बच्चों को संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं, सभी गुणों में संपन्न, ज्ञान में संपन्न, शक्तियों में संपन्न। जो बाबा ने खजाने दिए हैं, ज्ञान गुण शक्तियां, उनमें संपन्न फुल देखना चाहते हैं। क्योंकि बाबा तो यही कहते हैं कि जो मेरे पास है वो सब बच्चों को देता हूं, सब मेरे पास कुछ भी नहीं रहता, सब बच्चों के लिए है, केवल एक चीज रखता हूं। क्या बताया बाबा ने, क्या एक चीज रखते हैं जो नहीं देते हैं? साक्षात्कार की चाबी, क्योंकि वो बाबा के काम आएगी द्वापर युग से। बाकी सब कुछ मैं बच्चों को देकर आप समान बनाता हूं। तो जैसे बाबा संपन्न है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। सागर माना संपन्न। क्यों संपन्न कहते हैं? जो भी जल के स्रोत होते हैं या जल संचय के स्थान होते हैं, चाहे वो कुआं हो, चाहे कोई पॉन्ड हो, कोई नदी हो, या जो भी, वो फिर भी खाली हो सकते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन सागर कभी नहीं सूखता। सागर सदा भरपूर रहता है, सागर सदा संपन्न रहता है। तो शिव बाबा भी की भी भेंट सागर से करते हैं। जितना भी उस सागर से लो, सागर का जल कभी खुटेगा नहीं। तो एक तो सागर से भेंट करते हैं और दूसरा सूर्य से भेंट करते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सूर्य कितना प्रकाश देता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है। भले सांझ हो जाती है, ढल जाता है, लेकिन यहाँ लगता है ढल गया, परंतु फिर दूसरे स्थान पर उसका उदय होता है। तो सूरज सदा प्रकाश देता ही रहता है। तो न सूरज का प्रकाश कम होता है, न सागर का जल कम होता है। तो जैसे शिव बाबा संपन्न हैं, बाबा हमको अपने जैसा ही ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न बनाते हैं। अब हमें देखना है कि हम कितना संपन्न बने हैं, और फिर संपूर्ण अर्थात जैसे देवताओं की महिमा है, सर्व गुण संपन्न, फिर 16 कला संपूर्ण। तो 16 कला ये संपूर्णता की निशानी है, चंद्रमा की 16 कलाएं। 15 दिन लगते हैं पूनम से अमावस्या तक आने में, 16 दिन जैसे। और धीरे धीरे कला कम होती जाती होती जाती अमावस्या आती है, और फिर शुक्ल पक्ष शुरू होता है, फिर 15 दिन के बाद फिर पूनम, फिर अमावस्या। तो आत्मा की भी ऐसी ही स्थिति बन जाती है। तो कला अर्थात पवित्रता की कला, कला अर्थात आत्मा जो संपूर्ण थी, उसकी धीरे धीरे शक्ति क्षय होती गई। और बाबा जैसे कल भी कह रहे थे, बिल्कुल कलाहीन अमावस्या जैसे चंद्रमा तो है लेकिन अंधेरा है, दिखाई नहीं देता है। तो आत्मा की स्थिति भी ऐसे ही हो जाती है। फिर आत्मा कहाँ से शक्ति लेती है? शिव बाबा से, वो सूर्य है। चंद्रमा को भी रोशनी सूरज से ही मिलती है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को संपन्न भी देखना चाहते हैं, संपूर्ण भी देखना चाहते हैं। कितना संपूर्ण बेदाग हीरा, हीरे में दाग जितने अगर हो तो उतनी उसकी वैल्यू कम, इसलिए हीरे को तराशा जाता है। उसका उसकी जो खा उसके अंदर जो खाद है या जो कुछ भी है त्रुटि, वो निकाली जाती है, तराशते हैं। तो फिर वो हीरा इतना चमकता है। तो हम आत्माएं भी वो हीरे के समान हैं, जो जिनको बाबा आकर के तराशते हैं, और हमें बिल्कुल चमकीला हीरा बनाते हैं, हीरो एक्टर बनाते हैं। लेकिन ये संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए हमें अपना जो पुरुषार्थ करना है, उसमें हम कहाँ तक कर पा रहे हैं, वो खुद को देखना होगा। इसीलिए बाबा के हमेशा जब याद प्यार भी देते हैं तो क्या कहते हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। सबको एक जैसी याद प्यार तो देते हैं, लेकिन स्वीकार करने वाले नंबर वार लेते हैं। सागर कोई कमी नहीं रखता है देने में, सूरज कोई कमी नहीं रखता है प्रकाश देने में, लेकिन लेने वाले वो कितना लेते हैं हरे के ऊपर अब निर्भर है। इसीलिए नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, बाबा नंबर वार नहीं कहते, बाबा तो नंबर वन चाहते हैं, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ अनुसार नंबर वार बन जाते हैं, लेने में नंबर वार बन जाते हैं। तो कैसे हम नंबर वन बने और बाप समान बने, ब्रह्मा बाप समान भी बने, मम्मा समान भी बने, दादियों समान बने, जिन्होंने मम्मा बाबा को देख करके संपूर्णता को पाया। ब्रह्मा बाबा के आगे तो और कोई नहीं था, पर शिव बाबा से डायरेक्ट जो प्राप्ति की उसके आधार से संपूर्ण बने। मम्मा भी बाबा के कदमों पर चलती रही। दादियों ने फिर मम्मा बाबा को देखा और उनके कदमों पर चलते रहे। फिर बाद में आने वाले दादियों को देख करके उनके कदमों पर चलने लगे और इस प्रकार यह यज्ञ कितना आगे बढ़ता गया। लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, एक है लक्ष्य और दूसरा है उद्देश्य। उद्देश्य तो बहुत बड़ा होता है, वो व्यापक होता है, और लक्ष्य छोटे छोटे होते हैं। बिजनेस के अंदर भी होता है ना, हर बिजनेस का यही उद्देश्य होता है कि देश की सेवा हो, देश का कल्याण हो, देश के लिए, विश्व के लिए, ये उद्देश्य होता है। फिर उसमें छोटे छोटे गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, भाई जैसे 5 साल, 2 साल, 1 साल में ये करना है। तो बाबा ने भी हमें लक्ष्य भी दिया है और उद्देश्य भी दिया है। उद्देश्य तो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। क्या? इस सारे सृष्टि का परिवर्तन करना, इस नरक को स्वर्ग बनाना, कितना बड़ा उद्देश्य है। और लक्ष्य क्या है कि हमें अपने आप को पावन बनाना है, शुद्ध बनाना है, पवित्र बनना है, योगी बनना है। ये लक्ष्य शुरू से लेकर बाबा ने यही पहला लक्ष्य दिया। जो यज्ञ में समर्पित हुए उन्होंने यही पहली प्रतिज्ञा की कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। छोटी छोटी कुमारियां थी लेकिन सबने प्रतिज्ञा की, और उसी प्रतिज्ञा के कारण कितना विद्रोह हुआ, ब्रह्मा बाबा ने सामना किया। लेकिन ये प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं, कुछ भी हो जाए पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे। क्योंकि अगर उस उद्देश्य को पूरा करना है, स्वर्ग लाना है धरती पर, सतयुग लाना है, विश्व परिवर्तन करना है, या कहेंगे मनुष्य से देवता बनना है, तो उसके लिए पवित्रता और योग ये बहुत जरूरी है। पवित्रता के बल से सत धर्म की स्थापना होती है, और योग बल से पाप नाश होते हैं। इसलिए बाबा ने सबसे पहले यही प्रतिज्ञा कराई। तो जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं उनको जैसे ही निश्चय बैठता है कि हम को ये ज्ञान देने वाला स्वयं परमात्मा है और उनका ही आदेश है कि पवित्र बनो, योगी बनो, तो हमने अपना पुरुषार्थ शुरू किया। पवित्रता और योग पर ध्यान देना शुरू किया। तो पहला लक्ष्य ये पाया, और उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को सद्बुद्धि दी। बाबा ये भी कहते ना, जैसे ही आपका ब्राह्मण जन्म हुआ तो जन्म की सौगात क्या दी बाबा ने? क्या दी सौगात? दिव्य बुद्धि, या दूसरे शब्दों में बाबा कहते तीसरा नेत्र। ये सौगात दी हमारे जन्मदिन की, ब्राह्मण जन्मदिन की। तो दिव्य बुद्धि मिली कि हम ही इतने पावन थे, अब फिर से बनना है, हम ही थे। तीसरा नेत्र मिला जिससे हमने तीनों कालों को देखा कि हम कितने ऊंचे थे, फिर कैसे माया के वश हुए, अब फिर माया को जीतना है। तो तो माया को जीतना है, क्योंकि हम इतने ऊंचे थे, हम राजा थे, रंक बने फिर राजा बनना है, इतने पावन थे पतित बने फिर बनना है, अब समय वापस वही आ रहा है चक्र में। तो जैसे ये पता चला, तीनों कालों का ज्ञान मिला और निश्चय हुआ कि हम ही विजयी थे, हैं और रहेंगे, और हमारे साथ स्वयं भगवान है, इस निश्चय में विजय पाते गए और आगे बढ़ते गए। फिर बाबा कहते हैं कि जब बाबा के बनते हैं तो माया छोड़ती थोड़ी है, माया भी पीछा करती है। और यहाँ तक बाबा ने उस दिन कह दिया कि बाबा देखते हैं बच्चे थोड़ी गफलत करते हैं तो माया को कहेंगे जाओ। हाँ, फिर माया क्या क्या करती है वो भी हर मुरली में कुछ न कुछ आता है। माया क्या क्या करती है, पहले नाक पकड़ती है, फिर कान पकड़ती है, फिर चोटी पकड़ती है, फिर गिराती है, फिर बेहोश कर देती है, क्या क्या, हाँ फिर अंत में तो मार भी डालती है। हाँ, यहाँ तक भी बाबा ने कहा। और आज तो बाबा ने पूरा कॉन्ट्रास्ट बताया कि भगवान क्या करते हैं और माया क्या करती है। किसी ने हमको बहुत अच्छा फिर लिख करके भेजा, भगवान क्या देते और माया क्या देती है। भगवान हमें सुख देते हैं, माया हमको दुख देती है। भगवान हमें पावन बनाते हैं, माया हमको पतित बनाती है। तो पूरा कॉन्ट्रास्ट। अब हमको डिसाइड करना है, हमको किसके तरफ जाना है, भगवान की तरफ जाना है या माया के तरफ जाना है। तो हम बीच में टग ऑफ वॉर में आ जाते हैं। लेकिन जिसने ये महसूस किया कि भगवान ही मेरा सच्चा साथी है, मेरे सब संबंध उनके साथ ही हैं, तो वो अंत में विजयी जरूर बनेगा। लेकिन कोई अगर कहे ये बाबा तो है लेकिन वो भी है, फिर कुछ रग जाती है, तो फिर बाबा कहेगा फिर ठीक है आपकी मर्जी। अर्जुन को भी गीता में दिखाते ना, भगवान ने यही कहा, सबको मारो, सबको मारो, मारो गोली, मारो। हाँ, मारो माना स्थूल मारने की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि से भूलो, मेरा मेरा तुम कहते रहते हो ये सब भूलो, और मुझे याद करो। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, देश है देह के सब धर्मों को भूलो। और फिर ये सब मरे पड़े हैं, इनकी मौत निश्चित है, तुम इनके लिए शोक मत करो, मेरे से सर्व संबंध जोड़ो, क्योंकि वही काम आने वाला है अंत में। तो कहेंगे भाई भगवान को याद करो, सारी उम्र तो किया नहीं, अंत में जो मरणासन है उनको को भगवान को याद करो कैसे करेगा, उसमें तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसीलिए बाबा हमें वो भी कहते हैं कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि सब कुछ अचानक होगा, अचानक होगा, और अचानक के कारण सदा तैयार रहना होगा। लेकिन सदा तैयार रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बताते हैं ना कि किसी व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी हम भगवान को कब कब याद करना शुरू करें, तो उस गुरु ने कहा मरने से एक दिन पहले। हाँ, मरने से एक दिन पहले भगवान को याद करना शुरू करो, क्योंकि अंत समय तो बस उसी को याद करना है, तो कम से कम एक दिन पहले तो शुरू करो। तो उसने कहा कैसे पता चलेगा कि कब मरूंगा, कोई डेट तो मालूम नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि एक दिन पहले शुरू करना है कि कल मरने वाला हूं, तो फिर क्या करना होगा, क्या करना होगा, याद करना ही होगा, हर वक्त करना होगा, क्योंकि कभी भी अंतकाल आ सकता है। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि अचानक होगा, इसीलिए एवर रेडी रहो, पर उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और जैसे शिव बाबा ने अपना यह यज्ञ स्थापन किया, बाबा ने यही कहा अगली दिवाली नहीं आएगी। कई कहते ना ब्रह्मा कुमारियों ने तो कहा अगली दिवाली नहीं आएगी, अब ये तो 86 साल बीत गए, 86 दिवालियां आ गई, 86 वर्ष माना हर साल दिवाली, तो 86 दिवालियां आ गई और अगली दिवाली नहीं आएगी, फिर बाबा ने ऐसे क्यों कहा? तो बाबा कहते अगर बाबा ऐसे नहीं कहते होते तो ये यज्ञ ऐसे स्थापन होता, सब स्वाहा होते, इतना आज जो सारा विश्वव्यापी ये बाबा का कार्य चल रहा है वो होता अगर बाबा ये न कहते होते। पर हाँ, उस समय साक्षात्कार हुआ, बहुत साक्षात्कार, और साक्षात्कार जब देखते थे विनाश का तब उनको लगता था जैसे ये कल होने वाला है। ब्रह्मा बाबा को भी तो ऐसे ही साक्षात्कार हुआ और यही उनको लगा बस कल विनाश होगा, इसलिए फट से सब कैसे त्याग दिया और एक बीज जो बोया अपने तन मन धन का, उस बीज का से आज ये वृक्ष इतना फैलाए और सब भागे। पर बाबा अभी कहेंगे भागने की जरूरत नहीं है, अभी तो घर गृहस्थ में रहना है, क्योंकि उस समय स्थापना होनी थी, नींव पढ़नी थी, तो नींव पढ़नी थी तो नींव जब डालते ना, जब खोदना कितना पड़ता तो उसमें कितना किचरा भी पड़ जाता है, सब कुछ बहुत कुछ, क्योंकि नींव को पक्का करना है तो नींव के अंदर सब डालेंगे। लेकिन जब इमारत बनना शुरू होती है तो थोड़ी जो चाहिए डालो, क्या करना होता है, हा? सीमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, ईंटें भी अच्छी होनी चाहिए, सब अच्छा मजबूत होना चाहिए, पर नींव में तो बहुत कुछ पड़ जाता है। तो शुरू में तो बहुत आ गए, बहुत आ गए, और कई फिर भागंती भी हो गए क्योंकि बाबा को इतना पहचाना नहीं। लेकिन फिर बाबा कहते रहे लास्ट सो फास्ट जाएंगे बच्चे, बच्चे बहुत आने वाले हैं, बहुत आगे जाएंगे, तो वो भी हम देख रहे हैं अभी। और बाबा कैसे साक्षी दृष्टा होकर के देख रहे हैं ये स्थापना का कार्य कैसे चल रहा है, और हम बच्चों को भी यही ताकीद कर रहे हैं, बच्चे तुम भी साक्षी दृष्टा होकर के देखो। ड्रामा में सब कुछ निश्चित है, जैसे कल्प पहले स्थापना हुई थी वैसे ही होगी, वैसे ही होगी, कैसे होगा, क्या होगा, हाँ होगा कि नहीं, ये प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो कल्प पहले हुआ था वैसा ही होगा। ये बच्चे पुरुषार्थ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों अलबेले हैं, क्यों नहीं मेहनत कर रहे हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं, बाबा कहते वही प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है, सब प्रकार के चाहिए, महाराजा महारानी भी तो प्रजा दास दासी सब चाहिए, इसलिए क्यों कर रहे हैं ये क्यों प्रश्न उठ ही नहीं सकता है ना। सारे राजा बन जाए तो क्या होगा, हा? वो दिखाते ना, एक मिसाल देते हैं कि शंकर और पार्वती सृष्टि का भ्रमण करने निकले, तो पार्वती ने देखा कि ये क्या, कोई तो कितनी मेहनत कर रहा है और कोई तो देखो मौज कर रहा है, तो भगवान ये कैसा अन्याय, कोई तो इतना परिश्रम कर रहा है, खून पसीना एक कर रहा है, और कोई तो महलों में रहता है कोई, और वो कोई तो झोपड़ी में भी इनको नसीब नहीं है, तो ये सब क्यों? तो कहा ये सब जरूरी है क्योंकि सब प्रकार के चाहिए। तो कहा नहीं नहीं ये तो अन्याय है। अच्छा अन्याय है तो क्या करना है, सबको एक जैसा बना दिया, अब सारा राजा राजा बन गए, रानी बन गए, तो पानी कौन भरेगा ना, झाड़ू कौन लगाएगा, बर्तन कौन मांझेगा, सब राजा रानी हो गए। तो फिर पार्वती ने कहा नहीं, जैसे है वैसे ही रहने दो। तो क्योंकि उसको लगा ये तो अन्याय हो रहा है। हाँ, मुझे याद है हमारे पास जो सर्वेंट काम करने आती है ना, तो मैंने एक से पूछा, सफाई कर रही थी, मैंने पूछा तुम स्कूल गई हो? कहती नहीं। मैं स्कूल नहीं गई, थोड़ा भी नहीं पढ़ाई की, कुछ भी नहीं। कहती नहीं, हाँ गरीबी थी घर में। तो मैंने कहा थोड़ा तो पढ़ना चाहिए ना, अभी तो फ्री स्कूल गवर्नमेंट देती है, प्राइमरी स्कूल में तब तक तो फ्री है। तो बड़ा विचित्र जवाब दिया, कहा कि अगर मैं पढ़ाई करने लगूं तो ये काम कौन करेगा हाँ ये काम कौन करेगा, है ना, वो काम करने वाले भी तो चाहिए ना, कौन करेगा? सब सेठ बन जाएंगे तो फिर नौकर कौन बनेगा? अमेरिका में आप जाओ ना, कई यूरोपियन कंट्रीज में नौकर थोड़ी मिलते हैं, सब कुछ खुद करना पड़ता है। इसलिए मशीनें बनती गई है, क्योंकि नौकर है नहीं। यहाँ तो भारत में तो बड़ा सहज है, बहुत मिल जाते हैं, लेकिन विदेशों में नहीं मिलते हैं। तो मैं तो एक बार अमेरिका गए थे तो हमने देखा हफ्ते में एक दिन आती है मेड, सेंटर पर भी एक दिन आती है, सारे हफ्ते के कपड़े धोगी, वॉशिंग मशीन है सब कुछ, चलो कर देते हैं। एक वो एक ही दिन हफ्ते में सब झाड़ फूक करती, सब कुछ कर देती है। लेकिन वो गाड़ी में आती है, कार है, अपनी कार में आती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो यहाँ सारा दिन रहती हो और एक दिन में हफ्ते का पूरा कर देती हो, तो आपके घर में कौन करता है? तो कहा वो दूसरी मेड आती है हमारे पास फिर और आती है। तो इसीलिए मेड सर्वेंट भी कार में आती है ना, अपनी कार में आएगी फिर नौकर के चाकर, हाँ ये तो चाहिए। तो देखो वो सब राजधानी स्थापन हो रही है। तो इसीलिए कैसे देखना है हरे को, कैसे देखना है हरे को, साक्षी होके देखना है। इसलिए कुछ भी प्रश्न तो उठ ही नहीं सकता है। ये पांच बातें हमेशा हम जब ड्रामा की पॉइंट देते हैं तो पांच बातें जरूर बताते हैं कि ड्रामा माना कोई प्रश्न नहीं, एक कहानी बनी हुई है ना। अब उस कहानी में प्रश्न कैसे पूछेंगे, क्यों ऐसे कर रहा है, इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या होना है, वो हमें कहानी पूरी तो पता नहीं है। कई बार होता ना, कोई फिल्म देखने जाते हैं तो बच्चे पूछते हैं अपने माँ बाप से, मम्मी ये ऐसे क्यों करता है? तो बच्चे इंक्विजिटिव होते हैं, तो ये ऐसे क्यों करता है, मम्मी को भी पता नहीं कि क्यों करता है तो माँ क्या कहेगी, बेटा देखते रहो, हाँ देखो आगे क्या होता है, बस यही कहेगी ना, क्योंकि उसको भी पता नहीं है, कहानी तो पूरी पता नहीं है। तो हर सीन का दूसरे सीन से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, इसीलिए क्यों कर रहा है ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। तो इसीलिए कोई प्रश्न नहीं, साक्षी दृष्टा किसको कहते हैं, कोई प्रश्न नहीं। क्यों का कहा माना ये भी साक्षी दृष्टा नहीं है, डिटैच्ड ऑब्जर्वर जिसको इंग्लिश में कहें। तो प्रश्न नहीं, चलो कई लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं पर तो आश्चर्य खाते हैं, अरे ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, अरे क्या हो गया, ये क्यों आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं। अब बाबा कहते हैं जो साक्षी दृष्टा होगा वो आश्चर्य खाएगा, क्यों नहीं खाएगा आश्चर्य? हाँ, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है, कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, इसीलिए इस कल्प में भी ऐसे हुआ, अरे ऐसे कैसे हो गया। तो ये आश्चर्य खाना ये भी ड्रामा को साक्षी दृष्टा होकर के देखना नहीं है। हाँ, मुझे याद है हमारे एक अच्छे वरिष्ठ भाई थे, नारायण दादा कहते थे उनको, मधुबन में रहते थे। तो अब वो जा रहे थे बैंगलोर के थे, रोजी बहन थी बैंगलोर में जो रहती थी, उनके फादर और वो बाबा ने उनको मधुबन में समर्पित किया था। तो सारा परिवार जैसे बाबा के समर्पित बच्चे थे, तो मधुबन में रहता था। अब वो बैंगलोर जा रहा था तो भोली दादी के आगे वो गया टोली लेने के लिए, और भोली दादी से बात ही कर रहा है कि अचानक एकदम भोली दादी के कंधे पर ही जैसे सिर हो गया, मतलब उसी समय शरीर छोड़ दिया एकदम हार्ट फेल। अब उसको ले गई उनके कमरे में, ये क्या हुआ? लेकिन डॉक्टर को जैसे बुलाया तो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा ही इज नो मोर, मना खत्म। तो आश्चर्य खाने लगा, ऐसे कैसे गया? अभी तो बात कर रहा था, अभी तो ये कर रहा था। तो डॉक्टर उस व्यक्ति को देखता रहा, भाई को जो आश्चर्य खा रहा था, तो कहा मरना नहीं है क्या? सबको मरना है एक दिन, सबको मरना है, इसमें आश्चर्य क्या खाना? मौत कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी, किस रूप में आएगी, पता चलता है क्या? तो आश्चर्य क्या खाना? और एज सर्टेन एज डेथ, मृत्यु तो हर एक की आनी है, जिसने जन्म लिया है एक दिन उसको मरना तो है ही है, फिर चाहे आगे चाहे पीछे। तो आश्चर्य भी नहीं खाना है, अगर आश्चर्य खाया तो भी ये साक्षी दृष्टा नहीं कहेंगे। वो डॉक्टर ने ज्ञान दिया, जबकि वो जिसने ये प्रश्न किया वो बड़ा ज्ञानी आत्मा थी। तो ज्ञानी आत्मा ने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर कैसे कैसे चला गया, क्या हो गया, अभी तो अच्छा ही था, बहुत अच्छा था। डॉक्टर ने कहा भैया सबको जाना एक दिन। तो इसीलिए आश्चर्य क्या खाएंगे, इसलिए जो जैसा समाचार भी मिला तो हाय ऐसे कैसे हुआ, क्या हुआ, बाबा कहते हैं फुल स्टॉप। तो आश्चर्य भी नहीं खाना है। तीसरा क्या नहीं करना है? तीसरा है दुख भी नहीं करना है। कई बार हम दुख करते हैं ना, जिसको कई बार कहते सहानुभूति, सहानुभूति करते हैं। अब एक पेशेंट है, अब वो नर्स उसकी सेवा कर रही है और वो चिल्लाता है, परंतु वो नर्स दुखी थोड़ी होती है कि ऐसे दो दुखी है बेचारा, दुखी है बेचारा। नहीं, डॉक्टर भी दुखी नहीं होते, उनको पता है ये बीमारी में ये ऐसे होता है। तो कैसे देखेगा डॉक्टर और नर्स, कैसे देखते हैं? तो इलाज करेंगे, ठीक है, दवाई देंगे, कुछ इंजेक्शन देंगे, ये करेंगे, परंतु जो उसके रिश्तेदार होंगे, हाय इसको देखो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्योंकि वो तो मोहवश है, मोहवश है। तो मोहवश जो होगा वो तो रोना शुरू कर देगा, पर डॉक्टर और नर्स कैसे होंगे? उनको तो अपना काम करना है ना। तो इसीलिए वो साक्षी दृष्टा हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी जो सेवा है वो अपना कार्य करेंगे। हाँ, अगर उनके कार्य में कोई ऐसी गलती हुई तो फिर वो दोषी है, बाकी उस हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है ना। अगर वो ठीक हो गया तो नर्स कहेगी मुबारक हो, डॉक्टर कहेगा मुबारक हो, आप घर जा सकते हो। तो इतनी सेवा की नर्स ने तो मोह थोड़ी रखेगी कि भाई डॉक्टर ये पेशेंट मेरा घर न जाए, यहीं मेरे पास बैठा रहे, ये तो नहीं करेगी ना। अगर ठीक हो गया तो मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी नाउ यू कैन गो होम, घर जा सकते हो, इतनी सेवा की। पर सेवा किया तो मोह तो रखा नहीं, परंतु अगर शरीर छोड़ दिया, समझो हॉस्पिटल में इतनी सेवा उसकी की, अब पर नर्स थोड़ी कोई रोएगी या दुखी होगी या हाय हाय करेगी, भाई उसने अपनी सेवा ठीक की, बस सेवा ठीक होनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दोष उस नर्स का या डॉक्टर का निकलेगा। उसने भरसक पुरुषार्थ किया लेकिन उसका हिसाब किताब अपना खत्म पूरा हो गया शरीर के साथ, तो वो भी क्या कर सकेंगे? एक्सेप्ट इट, स्वीकार कर लो कि इनका पार्ट इतना ही था, तो उसका दुख नहीं होगा। क्योंकि दुख होना ये भी साक्षी दृष्टा की स्थिति नहीं है, भगवान को दुख होगा क्या? उस दिन बाबा की मुरली में था, इतनी सब आत्माएं वापस जाएगी, त्राही त्राही करेंगी, हाँ क्या नहीं होगा, खून की नदियां बहेगी, एटम बॉम्ब गिरेंगे, सब जल कर राख हो जाएगा और आत्माएं मच्छरों सदृश उड़ेगी। भगवान को दुख होगा? भगवान को दुख होगा? होगा हाँ? नहीं होगा। आप सोचो भगवान को दुख नहीं होगा। तो मैं हंसी की बात सुनाती हूँ, उस दिन जब बाबा की मुरली में आया तो मुझे याद आया कि एक विदेश की बहन थी, हाँ मधुबन, बहुत अच्छी बहन, बहुत योगी आत्मा। अब यहाँ मधुबन में तपस्या करने आई और अचानक उसको ना निमोनिया हो गया, ठंडी बहुत थी, इतना ध्यान नहीं दिया अपने ऊपर और एकदम साइलेंस में चली गई, उसका गला ही बैठ गया, बंद हो गया, एकदम लंग्स अफेक्टेड हो गए और उसने कुछ नहीं दवाई ली, थोड़ा होम्योपैथी थोड़ी सी ली बस। अब होम्योपैथी वाले भी तो वो भी कहा कि कितना दे सकेंगे, एलोपैथी में तो कहेंगे टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ, और होम्योपैथी वाले चलो ट्रायल एंड एरर मेथड, ये दवाई नहीं तो ये दवाई। अब उसके पूरे लंग्स इन्फेक्टेड हो गए, आखिर वो बेहोश हो गई, वेंटिलेटर पर उसको रखा हॉस्पिटल में और फिर शरीर छोड़ा। तो बाबा की मुरली चल रही थी, बाबा शांतिवन में आए हुए थे और इसने माउंट आबू के हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा। तो जब मुरली पूरी हुई तो निर्वैर भाई स्टेज पर बाबा को कहने लगे, बाबा वो गई हाँ, क्योंकि पहले बताया था कि बाबा वो बहुत सीरियस है, या दादी को बताया होगा, तो वो गई। तो बाबा ने कह दिया गई नहीं आई, समझ गए हाँ, गई नहीं आई। क्यों? हाँ बाबा के पास तो गई, हमारे यहाँ से गई, पर बाबा के लिए वो आई, हाँ वतन में आ गई। तो बाबा तो वतन में है तो बच्ची को तो बच्ची का तो स्वागत किया बाबा ने, और हम समझेंगे वो गई। अब देखो बाबा को दुख थोड़ी हुआ, हमको थोड़ा हुआ कि भाई बेचारी बहुत अच्छी थी, तपस्वी आत्मा थी, परंतु उसका पाठ इतना ही था। तो बाबा ने कैसे उसको उस समाचार को साक्षी होकर के सुना, और बाबा ने कहा नहीं वो बच्ची आई। तो कहने का भाव है कि दुख भी नहीं, उसका पाठ इतना ही था। तो दुख भी नहीं करना है, प्रश्न भी नहीं पूछना है और आश्चर्य भी नहीं खाना है। फिर चौथा क्या है? चिंता। चिंता जैसा मर्ज नहीं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, न जाने कितनी चिंता करते हैं। हाँ मिसाल देते हैं ना, एक बच्चा अभी स्कूल से लेट अभी आया नहीं वापस, अब माँ को इतनी चिंता हो जाती है बच्चा क्यों नहीं आया, क्या हो गया क्या हो गया, फिर इतना सोच लेती है कहीं एक्सीडेंट ना हो गया होगा, कहीं वो हॉस्पिटल में नहीं होगा, हाँ कहीं वो मर न गया हो, यहाँ तक भी सोच लेती है। और फिर थोड़ी देर के बाद बच्चा आता है, मम्मी मैं तो खेल रहा था, हाँ मैं खेल रहा था, और माँ ने तो उसको मन में मार भी डाला, पता नहीं कहीं मर न गया हो, इतना नेगेटिव सोच लेते हैं, इतना नेगेटिव, और वो चिंता का रूप हो जाता है, हाय क्या होगा कहाँ होगा क्या होगा कैसे, वो अंदर वो मना क्या क्या हो जाता है। अब बाबा कहते चिंता भी नहीं होना चाहिए, अंदर में क्या सोचो जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि ड्रामा के अंदर हर चीज कल्याणकारी है। हाँ मेहनत करो, ढूंढो, देखो क्यों नहीं आया क्या हुआ जरूर, लेकिन वो चिंता नहीं होनी चाहिए। तो न दुख होना चाहिए न चिंता होनी चाहिए, और फिर पांचवी चीज है डर, अंदर में डर, पता नहीं, तो डर भी नहीं होना चाहिए। डर किस बात का? डर तब होता है जब कोई अंतर में कुछ अपना कोई ऐसी भूल की है, कोई कड़ा संस्कार है, हाँ पता नहीं इसकी सजा मिलेगी ये मिलेगा, तो डरते अंदर, गलत काम किया है तो डर लगता है, परंतु हमने कोई गलती नहीं की है, हर एक का पाठ साक्षी होकर के देख रहे हैं, तो कोई प्रकार का डर भी नहीं। एक तो क्योंकि कुछ नया नहीं है, नथिंग न्यू, दूसरा जो कुछ होता है उसमें कोई ना कोई कल्याण है, इसीलिए सारी ये गीता का ये जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा सबसे अच्छा। तो चिंता की क्या बात है, डर की क्या बात है, तो न दुख न डर न चिंता, न प्रश्न न आश्चर्य, इसको कहते हैं साक्षी दृष्टा स्थिति। और हर बात में स्थिर अवस्था, एक रस अवस्था, वो योगी की अवस्था है। कुछ भी हो जाए, योगी की स्थिति बदलती नहीं है। जो भोगी होते हैं ना, उनकी वो कहते हैं 16 प्रकार की मूड्स होती है, वो हर घड़ी अपनी मूड बदलते रहते हैं। अभी तो देखो हंस रहे हैं जोर जोर से, अभी देखो रो रहे हैं, अभी चिंतित है, अभी खुश है, हर घड़ी उनकी मूड बदलती है। उनको कहते हैं गिरगिट की तरह, गिरगिट क्या करता है, रंग बदलता है। तो मूड बदलना, ये मूड बदलना ये भी देह अभिमान की निशानी है। कैसे पता चलता है ये बड़ा देह अभिमानी है, स्वीकार तो होंगे लेकिन मूड बदलना ये भी देह अभिमान की निशानी है। और योगी है तो देही अभिमानी स्थिति है, तो एक रस अवस्था है। और जहां एक रस अवस्था है तो ऑटोमेटिकली मूड्स तो नहीं बदलेंगे ना। तो अगर मूड बदलते रहते हमारे, माना दे अभिमान बहुत है। अभी अभी इतना गुस्सा आ गया जो बात मत पूछो। अरे भाई क्यों गुस्सा किया, ठीक है ना, कोई भी बात है आप धीरे से ही बोल सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, प्यार से भी पूछ सकते हैं, गुस्सा क्यों करना। चलो वो कैसा भी है, झूठ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन हम गुस्सा करके हम उसको वो सच बुलवा सकेंगे क्या, उसको नहीं बोलना है सच, तो हम क्यों अपना कर्म बुरा करें। अब उसका कर्म उसके साथ है। तो ये ज्ञान जो बाबा ने दिया है, जिसके आधार से हमारी अवस्था इतनी एक रस हो जाती है और साक्षी दृष्टा होकर के हर चीज को देखते हैं, हरे का पाठ देखते हैं। और जब हरे का पाठ हम साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं, हलचल में नहीं आते हैं, तो ऑटोमेटिकली न प्रश्न उठेगा, न आश्चर्य होगा, न दुख होगा, न चिंता होगी और न ही डर लगेगा। तो ड्रामा का ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है, 3 बिंदु लगाने का ज्ञान, इतना पावरफुल ये ज्ञान है, जिसके आधार से हम अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं। इसलिए जब शिविर वाले आते हैं ना, तो हम उनको एक वो राजयोग का आधार विधि जब बताते हैं, तो उसमें ये भी बताते कि परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है तो क्या करो। तो हम उसमें मिसाल देते हैं, पहले इसका ये मिसाल देना होता था, आजकल तो नहीं है, मतलब है दूसरे रूप से। अगर जैसे लोकल कॉल होती है, तो लोकल कॉल में 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर या जो भी है वो होते हैं लोकल कॉल, लैंडलाइन जब होता था तो लैंडलाइन में 4 नंबर होते हैं, तो लोकल नंबर है। पर जब STD करना है तो क्या करते हैं, तो पहले 0 लगाना पड़ता है। 0 लगाने से जो लोकल कॉल्स है वो कट जाते हैं और STD जो नंबर है वो लगाना पड़ता है, जो भी है, क्योंकि उस शहर का जो नंबर है कोड नंबर वो लगाना पड़ता है। तो 0 लगा करके फिर वो लगाना पड़ता है। और जब इंटरनेशनल कॉल करते हैं तो 00 लगाना पड़ता है, 00 तो, और फिर 00। पर अब ये परम धाम से कनेक्शन करना है तो क्या करना होगा, 000। तो 0001 ये परमात्मा का नंबर है, हाँ, और आपका फोन नंबर लग जाएगा बाबा के साथ। चलो ठीक है, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
तो दीदी ने भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य से आप सभी को बखूबी परिचित कराया, उसके अनुसार अपने चार पांच दिन की रूटीन को बनाए रखना। एक हाथ हिलाकर पुनः पुनः दीदी का शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।